ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन करने वाला विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत। सिरहा के लाहन में हृदय और मधुमेह रोग के उपचार के लिए 500 बिस्तरों वाली सुविधा संपन्न अस्पताल का निर्माण शुरू। फाल्गुन पर्व होली को मर्यादित रूप में मनाने के लिए काठमांडू घाटी के 3 जिला प्रशासनों का आग्रह। और पाकिस्तान में विद्रोही समूह ने रेल पर हमला कर बंधक बनाए गए 190 लोगों को मुक्त कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले विधेयक 2081 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और समावेशिता के मुद्दों को केवल कागजी रूप में नहीं बल्कि व्यवहार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन का प्रवर्धन तभी संभव है जब इन मूल्यों को व्यवहार में उतारा जाए। इसी बैठक में विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि अस्पष्ट और दोहरे अर्थ वाले कानूनों को संशोधित कर स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रभावी शासन प्रणाली के माध्यम से जन केंद्रित सेवा प्रवाह सुनिश्चित करना है। इसके बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने सहकारी से संबंधित कुछ नेपाल आईन में संशोधन करने वाले विधेयक 2081 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पूर्व बैठक में आज अध्यादेश प्रतिस्थापन से संबंधित 5 विधेयक प्रस्तुत किए गए। बैठक में सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तो पहला संशोधन विधेयक 2081 और आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं निवेश वृद्धि से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081 प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा निजीकरण पहला संशोधन विधेयक 2081 और सहकारी से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081 भी प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081 प्रस्तुत करते हुए बताया कि दोनों सदनों की बैठक न होने के कारण कानून की आवश्यकता के चलते अध्यादेश लाना पड़ा। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहला संशोधन विधेयक 2081, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं निवेश वृद्धि से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081 और निजीकरण पहला संशोधन विधेयक 2081 प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार को केवल कानून बनाने और विकास के सभी कार्य प्रदेश सरकारों को सौंपने का विषय संवैधानिक नहीं है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने सहकारी से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन विधेयक 2081 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सहकारी क्षेत्र में देखी गई विकृतियों को समाप्त करने और आम बचतकर्ताओं की बचत को सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। सभामुख देवराज घिमिरे ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चैत 7 गते गुरुवार को होगा। सांसदों को प्रश्न आगामी रविवार दोपहर 2 बजे तक संसद सचिवालय में लिखित रूप में जमा करना होगा। सांसदों ने आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सड़क निर्माण और मरम्मत जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार से संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन और सुझाव समिति की अवधि 45 दिन बढ़ाने का निर्णय किया है। फाल्गुन 26 गते आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया गया। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि निर्माणाधीन नागढुंगा सुरंग मार्ग परियोजना के लिए प्रस्तावित सहूलियत पूर्ण ऋण सहायता समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अर्थ मंत्रालय के सह सचिव की अध्यक्षता में वार्ता टीम गठित की जाएगी। साथ ही स्विट्जरलैंड सरकार से प्राप्त होने वाले 25,65,00,000 रूपये के अतिरिक्त अनुदान को भी स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने चीन सरकार द्वारा एम्बुलेंस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान किए गए 50 इलेक्ट्रिक वाहनों को स्वीकार करने का भी निर्णय किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पद पर तनहू जिले के डॉक्टर रघुराज काफले को नियुक्त किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सिरहा के लहान नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में 500 बिस्तरों वाला एक आधुनिक हृदय और मधुमेह रोग अस्पताल बनने जा रहा है। नेपाल हृदय रोग निवारण संघ द्वारा जर्मनी की दो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं नेपाल मेड जर्मनी और रोटरी क्लब कटूस के 2 अरब रुपए के आर्थिक सहयोग से इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लहान नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई 11 बीघा जमीन पर यह अस्पताल बनेगा। नगरपालिका ने सार्वजनिक जमीन पर 2 अस्थायी भवन बनाकर मार्ग 4 गति से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी है। नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी ने कहा कि अस्पताल के पूरा होने के बाद मरीजों को इलाज के लिए धरान, विराटनगर और काठमांडू जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हुमला के सरके गार्ड गांवपालिका वार्ड नंबर 7 रोड़ीकोट में आज सुबह मिट्टी धसने में से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब ये महिलाएं घर लीपने के लिए मिट्टी लेने गई थी। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी सुरेश सुविदे के अनुसार 28 वर्षीय नेत्रकला जैसी मिट्टी खोदने के दौरान मिट्टी के ढेर के नीचे दब गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अन्य 4 घायल महिलाओं को नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से सुर्खेत ले जाया गया है। सुर्खेत से हमारे संवाददाता आकाश तारा बैक ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। काठमांडू घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर के प्रशासन कार्यालयों ने फागू होली पर्व को मर्यादित और सभ्य तरीके से मनाने की सभी नागरिकों से अपील की है। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर प्रशासन ने अलग अलग सूचना जारी करके होली पर्व को शांतिपूर्ण और संस्कृति के रूप में अनुसार सभ्य तरीके से मनाने का आग्रह किया है। हिमालयी और पहाड़ी जिलों में होली कल, जबकि तराई क्षेत्र में परसों होली का उत्सव मनाया जाएगा। प्रतिकूल मौसम और खराब विजिबिलिटी के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से होने वाली आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल कार्यालय ने बताया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और कम दृश्यता के कारण कुछ विमानों को आकाश में ही होल्ड पर रखा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अंतर व्यवस्थापिका मंच नेपाल के 10वें सम्मेलन से पारित 7 सूत्रीय घोषणा पत्र सौंपा गया। ये सम्मेलन पूस 1 गति से 3 गति तक गंडकी प्रदेश की राजधानी पोखरा में आयोजित किया गया था। घोषणा पत्र आज प्रधानमंत्री निवास बालोटार में सौंपा गया। घोषणा पत्र में संघीयता और संविधान के क्रियान्वयन को गति देने, संघ प्रदेश और स्थानीय तह के बीच समन्वय बढ़ाने और शेष कानूनों को पहचान कर संघीय संसद द्वारा कानून निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि परिवर्तन को उलटाने की कोशिश करने वालों को छूट नहीं दी जाएगी। बुटवल में आयोजित मगर मुक्ति मोर्चा के 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले दिनों नागरिकों के साथ संबंधों में आई कमजोरी को सुधारने की प्रतिबद्धता जताई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में एक विद्रोही समूह ने रेलवे ट्रेन पर हमला करके 190 यात्रियों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है। विद्रोही समूह ने पाकिस्तान के एक प्रमुख रेलवे मार्ग पर ट्रेन को रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करके विद्रोहियों को मार गिराया और सभी 190 बंधकों को सुरक्षित रूप से मुक्त कराया। पाकिस्तान सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए विद्रोही समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। सुरक्षा बलों ने कहा है कि वे देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुक्त किए गए यात्रियों को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सरकार ने यात्रियों और उनके परिवारों को आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। ये घटना पाकिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है और सरकार को विद्रोही समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देती है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह से संबंधित कुछ नेपाल आईन संशोधन करने वाला विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत। सिरहा के लाहान में हृदय और मधुमेह रोग के उपचार के लिए 500 बिस्तरों वाली सुविधा संपन्न अस्पताल का निर्माण हुआ शुरू। फाल्गुन पर्व होली को मर्यादित रूप से मनाने के लिए काठमांडू घाटी के 3 जिला प्रशासनों का आग्रह। और पाकिस्तान में विद्रोही समूह ने रेल पर हमला कर बंधक बनाए गए 190 लोगों को मुक्त कराया गया। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।